नमोम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशुका श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। सो हम कहां तक पाठ किया था कल? महाभारत, पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त हो चुका प्राप्त कर लिया स्वयंवर सभा में। अर्जुन लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को पांचाली को प्राप्त हुआ, और पांचाली को लेकर जब घर आए जहां कुम्हार के घर में उन्होंने ठहरे थे, तो जब बताया कि मैं भिक्षा लेके आया हूं, तो कुंती ने क्या बोली? वापस में बांट लो। तो पांच भाई मिलकर इसको बांट लो। तब बल्कि बाद में जब कुंती बाहर निकली तो देखा कि ये तो पांचाली को लेकर आई है। तो तब युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि माँ की वाणी जो है, माँ की वाणी को ग्रहण करना चाहिए, उसको ही मान लेना चाहिए। तो इसके पश्चात पांच भाई पंच पांडवों ने द्रौपदी को विवाह करने का तय किया। और इस समय कृष्ण ने भी वहां आया। कृष्ण पहचान लिया कि ये तो जरूर पांडव होगा, तो कृष्ण ने उनको पहचान कर वहां आ गए, उनको मिला। और इधर धृष्टद्युम्न भी वहां उनको पीछे करके करते हुए वहां आकर देखा कि ये तो क्षत्रिय है, ये तो ब्राह्मण, इनका हालचाल, इनका विचार, इनका आचरण ब्राह्मण जैसा नहीं है, ये क्षत्रिय जैसा है। तब द्रुपद उनको अपना प्रासाद में बुलाया, और बुलाने के पश्चात द्रुपद को भी पता चला। तो अंत में पांडवों ने अपना परिचय प्रदान किया कि उन्होंने पांडु का पुत्र है और ये है कुंती देवी। अब तब द्रुपद का भी मन में शंका हुआ कि ये पांच लड़के के साथ एक लड़की का शादी कैसे हो सकता है। तो बताया भी कि एक राजकुमार एक से अधिक पत्नी ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि कोई राजकुमारी के लिए एक से अधिक पति ग्रहण करना सही नहीं है। बल्कि तब व्यासदेव आकर कुछ बताया, उनका पांचाली का जन्म का वृत्तांत बताया, शंकर महादेव से उनका वर प्राप्ति के बारे में सुनाया, तब द्रुपद का पता चला। और अंत में व्यासदेव द्रुपद को दिव्य दृष्टि दान करके पांडव का दिव्य रूप दर्शन करवाया। तब द्रुपद को पता चला कि ये पांडव साधारण मनुष्य नहीं है, ये देवता है, देवता के अंश से इनका जन्म हुआ है। तो यहां तक हम कल डिस्कशन किया था। तो इसका पश्चात क्या हुआ, राजाओं ने दूत भेजा कि द्रौपदी को जो ब्राह्मणों ने जय कर लिया है, विजय प्राप्त कर चुका है, वो कौन है, इसको ढूंढने के लिए भेजा। तो दूत जाके सभी राजाओं का, अपने गुप्तचर ने शीघ्र ही राजा को राजाओं के पास जाके बताया कि ये पांडव है, और जो लक्ष्य भेद किया था वो है अर्जुन, और जो लड़ाई करके शाल जैसा महावीर को हराया वो है भीम। तो ये सब सुनने के पश्चात दुर्योधन का मन में बहुत ही कष्ट हुआ। दुर्योधन ये समाचार सुनकर दुर्योधन का बड़ा दुख हुआ, और वो अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के ओर चल पड़े। दुशासन ने दुर्योधन के धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि भाग्य ही बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव आप तक जी रहे हैं। कितना कष्ट हुआ उनका, उनको पांडवों को अपना राह से निकालने, हटाने के लिए कितना कोशिश किया, बल्कि अंत में क्या हुआ, पांडव को कुछ नहीं हुआ, उनका समृद्धि यश बढ़ता ही जा रहा। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि कुरुकुल का यश क्रमशः बढ़ ही रहा है, यश वृद्धि हो रहा है। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र ने सोचा कि जरूर दुर्योधन ने द्रौपदी को प्राप्त हो चुका है, तो बहुत खुशी के बारे बोला कि मेरा पुत्र और पुत्र ये को जल्दी यहां आने को लाओ, ये तो बड़ी बड़ी आनंद की बात है, बड़ी आनंद की बात है। और उन्होंने तरह तरह के गहने भेजने के आज्ञा देते हुए कहा कि वर वधू को मेरे पास लाओ, और तब विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडव के साथ हुआ है, और वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने अपना मन भाव को छुपाते हुए बहुत कष्ट से बोला, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्र के भी बढ़कर प्यार करता हूं। उनके जीवन से, विवाह से और द्रुपद जैसे संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूं। द्रुपद के आश्रय से बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूं, विदुर ने तब धृतराष्ट्र को बताया कि मैं चाहता हूं कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। जब विदुर वहां से चले गए, तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि महाराज, विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते, आप उनके सामने शत्रुओं के बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकाश करते हैं, हम तो रात दिन शत्रुओं को बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। तब धृतराष्ट्र ने बोला, बेटा, यही तो मैं भी कहता हूं, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, कहीं वो मेरे भाव को भाप न ले, इसलिए मैं उसके सामने पांडव कहीं गुणों का बखान करता हूं, तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो वो बतलाओ। तो दुर्योधन ने बताया कि किसी तरह पांडव को मार डालना चाहिए, नहीं तो द्रौपदी के माध्यम उनके बीच में भेद सृष्टि करना चाहिए। बल्कि अच्छा होगा कि अगर भीम को मारा जाए, क्योंकि भीम अगर मर गया तो अर्जुन तो कर्ण का एक चौथाई भी नहीं है, तो अर्जुन को हम हरा लेंगे और तब तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारे करने के चौथाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न जचे तो कर्ण की उनके पास भेज दीजिए। जब वे लोग कर्ण के साथ यहां आ जाएंगे तो फिर पहले की तरह कोई ना कोई उपाय किया जाएगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। तो ऐसे दुर्योधन अपना विचार बतलाया, अपना प्लान बतलाया कि द्रुपद का पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो ये सलाह है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? बल्कि कर्ण का इस ये राय का ये सलाह अच्छा नहीं लगा। कर्ण ने बताया, चलो लड़ाई करके उसको पराजित करके हम लोग उसको जीत लेंगे। सारा राज्य देकर भी तुम द्रुपद को, पांडवों को विपक्ष में नहीं कर सकते, और इसलिए मेरा सम्मति, कर्ण ने बताया, इसलिए मेरा सम्मति तो ये है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दे और द्रुपद को हराकर पांडवों को पराक्रम से ही मार डाले, क्योंकि पांडव साम दान और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। इन वीरों को तो केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम सशस्त्र कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वो तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार ये है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम से सुख मिलेगा। तब भीष्म जी को, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्यों को भी बुलाया गया। तो जब ये संकल्प के बारे में, पांडवों के साथ लड़ाई करने के संकल्प के बारे में जब बताया, तो भीष्म ने उसको इनकार कर दिया। भीष्म बोला कि पांडु का पुत्र और तुम्हारे पुत्र सब मेरे आंखों में एक ही बराबर, आंखों में बराबर हैं। तो तुम जैसा तुम्हारे पुत्र का राज्य में अधिकार है, पांडु का पुत्र का भी राज्य में वैसा ही अधिकार है। बल्कि पांडु पुत्र का, युधिष्ठिर का अधिकार सबसे बढ़कर है, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र है परिवार का, तो इसके कारण ये राज्य उसका ही मिलना चाहिए था। तो ऐसे बताया तो द्रोणाचार्य ने भी उनसे सहमत दे दिया, बोला कि हाँ, भीष्म पितामह का विचार ही ठीक है, भीष्म जी का विचार ही ठीक है, वैसा ही करना चाहिए। पांडव को यहां बुलाकर लाओ और उनको आधा राज उनको दे दो, और विदुर भी इससे सहमति दिया। तब दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया और कर्ण भी उसको अस्वीकार किया। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल भून रहा था। उसने कहा, महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्राय उनसे अपने हित की सलाह लेते हैं, रहते हैं। यदि विधाता ने आपको भाग्य में राज्य लिखा है तो सारे संसार की शत्रु हो जाने पर भी वो आपको हाथ से नहीं छीन सकता। यदि कोई अपने हृदय के भाव को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे तो समझदार पुरुषों को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, ऐसे उन्होंने कहा था। तब द्रोणाचार्य ने बोला, अरे कर्ण, मैं तेरी धृष्टता समझ रहा हूं। तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है। तू पांडव का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह की अनिष्टकारिणी बतला रहे हैं। मैंने अपनी समझ से कुरु वंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरु वंश का अहित दिखा पड़ता है तो तुझे जिससे हित दिखे वही कहा। मैं कह देता हूं कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कुरु वंश का विनाश हो जाएगा। द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हो गए कर्ण की यह कहानी सुनकर। तब विदुर ने बहुत से डांटा कर्ण को और दुर्योधन को। विदुर हर समय ऐसे, विदुर एकदम स्पष्टवादी थे, एकदम सीधा सीधा बोल देते थे। जैसे याद है दुर्योधन के जन्म होने के बाद ही विदुर ने बोला, इसको त्याग दो, इसको मार डालो, नहीं तो ये वंश का ध्वंस कर देगा। तो विदुर ने अंत में बताया कि पांडव जीवित हैं, जब से प्रजा को ये बात मालूम हुई है कि पांडव जीवित हैं, तब से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। सब नागरिक लोग, नागरिक राज्य के रहने वाले सब लोग पांडव के दर्शन के लिए उत्सुक हुए हैं। इस समय पांडवों को विरुद्ध कोई काम करने से राज विप्लव हो जाएगा। आप पहले अपने को प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं, उनकी समझ अभी तक कच्ची है, इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया है था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यनाश हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं, उनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं। ऐसे हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जब सही उपदेश जब मिलता था उसका मनोभाव सीधा हो जाता था, बल्कि जब वो दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि के चक्कर में पड़ जाता था तो उसका मनोभाव एकदम बिगड़ जाता था। तब विदुर द्रुपद के राज्य में गया, पांचाल में गया, वहां जाकर पांडवों को लेकर वापस आया। और तब धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज दे दिया और बल्कि जो जगह जो दिया था अपने लिए वो हस्तिनापुर को रख लिया, जो राजधानी जो था और जो एकदम बेकार था वो जगह पांडवों को दे दिया, खांडवप्रस्थ। बल्कि धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मन मुटाव ना हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी की कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तब व्यासदेव ने, जब वो पांडव ने खांडप्रस्थ में चले गए तो व्यासदेव ने स्वयं वास्तु विचार किया। वास्तु देखो, वास्तु शास्त्र जो है उसका प्रचलन बहुत साल पहले से भी भारत में था। वो वास्तु के अनुसार नगर का स्थापना हुआ था, वास्तु के अनुसार घर का निर्माण हुआ था, सभा का, ये सब कुछ वास्तु के अनुसार ही होता था। तो व्यासदेव ने शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींवें डलवाई। थोड़ी ही दिन में वह तैयार होकर सर्प के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। यह नगर का नाम बना इंद्रप्रस्थ, इंद्र का रहने का स्थान, इंद्र का नगरी। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चहर दीवारी बनाई गई थी। बड़े बड़े फटक, ऊंचे ऊंचे महल और गोपुर दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के आखड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कहां प्रबंध था। तो वैसे ये नगर बना, नगरी बना इंद्रप्रस्थ। तो ये तब वहां युधिष्ठिर महाराज ने अपना नगर बनाकर राजकाज शुरू किया। तब वहां सब बड़े विद्वान पंडित और सात्विक ब्राह्मण ने और सेठ लोग और बनिया और कारीगर सब आकर वहां रहने के लिए आ गए। और कुछ दिन के बीच ही वो जगह एकदम समृद्धि से परिपूर्ण हो गया था। तो एक दिन नारद मुनि वहां आए। तो नारद मुनि आकर एक कहानी उनको बताया कि देखो पांडव, तुम पांच भाई, तुम्हारा एकता ही तुम्हारा बल है। तुम्हारे बीच वापस में कोई कोई झगड़ा या संघर्ष नहीं होना चाहिए। बल्कि तुम पांच भाई द्रौपदी को विवाह किए हो, इसलिए एक संकट का एक बड़ा संभावना है, संघर्ष होने का संभावना है। ये कहकर नारद ने एक कहानी सुनाई। हिरण्यकशिपु का वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली था, महाबली दैत्य था, और उसका दो पुत्र था जिसका नाम था सुंदर और उपसुंद। सुंदर और उपसुंद में उन दो भाई का बीच में इतना गहरा प्रेम था कि लगता था कि ये दो शरीर में एक आत्मा है। शरीर दो है बल्कि व्यक्ति एक, इतना गहरा प्यार था उन्हें। तो उन्होंने शक्ति प्राप्ति के लिए, अमर बनने के लिए बहुत तपस्या की, बहुत साल तक, हजारों साल तक तपस्या की। और तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने वहां आकर उनको पूछा, तुम क्या चाहते हो, क्या बर मांगते हो हमसे। तो बोला कि हम, जैसे दैत्य लोग बोलते हैं असुर लोग, हम अमर बनना चाहते हैं। असुर दैत्य राक्षस जितने सारे हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब अमर बनना चाहता है। तो बोला कि मैं, हम अमर बनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी बोला कि ये तो कभी भी संभव नहीं है। कोई भी इस भौतिक जगत में कोई भी मृत्यु से मुक्त हो नहीं सकता है। मृत्यु सबके लिए ही अवश्यंभावी है, और कुछ बर मांगो। तो वो दोनों ने बताया, तो ये बर दीजिए, केवल हमारा मृत्यु एक दूसरा का हाथ में ही केवल हो। वो सोचा कि उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार का संपर्क है कि उन दोनों में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हो सकता है। तो ये सोचकर वो बोला कि केवल हम ही एक दूसरे को मार सकते, मतलब सुंदर उपसुंद को मार सकता है और उपसुंद केवल सुंद को मार सकता है। तो ब्रह्मा बोला ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही। और ये दो असुरों ने इतना ऐसा शक्ति प्राप्त होकर तीन लोग को बहुत बहुत सताने लगा, विशेष रूप से ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को मारने लगा। ब्राह्मणों को यज्ञ बंद कर दिया और ब्राह्मणों ने जब जंगल में भाग गया तब वो शेर और शेर हाथी इसके रूप लेकर वहां जाके ब्राह्मणों को खाने लगा और राज्य में जाकर क्षत्रियों पर अत्याचार ये करके चढ़ाई करके उनको सब मारने लगा। तो ये और स्वर्ग लोग को देवताओं को भी स्वर्ग से हटा दिया। तो इस स्थिति में देवताओं ने सब जाकर ब्रह्मा जी को पूछा क्या इस स्थिति को हम कैसे संभाल सके, इस अवस्था इतना कठिन हो गया है, इतना सारे उपद्रव कर रहा है ये दो और कोई तो इसको मार नहीं सकेंगे, आप इसको वरदान किए हैं, वर दिए हैं, तो इसको हम क्या करें, इसको कैसे संभालें। तो ब्रह्मा जी ने तब विश्वकर्मा को बुलाया, तो विश्वकर्मा को बोला विश्वकर्मा तुम सारा दुनिया की जितने सारे सुंदरता हैं वो सुंदरता को तिल तिल करके लेकर तुम एक सुंदरी को बनाओ। तब विश्वकर्मा ने जितने सारे सुंदर वस्तु हैं उसका सुंदरता लेकर एक सुंदरी रमणी तैयार किया, तिल तिल करके उसको सुंदरता लेकर के द्वारा उसका रचना हुआ था, इसलिए उसके नाम हुआ था तिलोत्तमा। तो ब्रह्मा जी ने तब बोला तुम जाओ सुंद उपसुंद के पास जाकर उसके उसको अपना मोहित अपना रूप से मोहित कर दो। तो तिलोत्तमा जब गया तब सुंद ने बोला ये देखकर कि ये मेरा होना चाहिए, उपसुंद ने बोला नहीं नहीं ये मेरा होगी। तो वैसे तिलोत्तमा को लेकर दोनों भाई वापस में लड़ाई शुरू किया और एक दूसरे को मार डाला। तो नारद मुनि ने बोला देखो ये सुंदरी रमणी के कारण यद्यपि दो भाई के बीच इतना प्यार था फिर भी एक दूसरे को शत्रु बन गया, तो तुम्हें भी संभाल के रहना क्योंकि तुम पांच भाई एक पत्नी को प्राप्त हो गए हो। तब पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज ने उनका ये निर्देश उनका ये उपदेश स्वीकार करके तय किया निश्चय किया कि जब एक समय निर्दिष्ट रहेगा कि किस समय द्रौपदी किसका पास रहेगा और उस समय अगर कोई भी जब द्रौपदी और जिसके साथ द्रौपदी का रहना था उनके पास अगर चले जब दोनों ने एक साथ हैं तब उनको 12 साल के लिए ब्रह्मचारी के रूप में निकल जाना चाहिए वहां छोड़कर। द्रौपदी का ये मैं ये पढ़ रहा हूं। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांडव ने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही ये प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी, एक नियमित समय तक एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा, यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांत वास के देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। और इसका यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ सकी, बल्कि एक दिन ऐसा हुआ कोई डाकू ने एक ब्राह्मण का गाय चुरा कर ले गया, तो तब ये ब्राह्मण बहुत दुखी होकर पांडवों के प्रसाद में आया और अर्जुन के पास अभिजोग किया कि हम आपके सहारा में आपके राज्य में रहता हूं और आप हमारा आपको हमें रक्षा करना चाहिए और डाकू हमारा गैया गौवे चुरा कर ले गया, तो आप जल्दी उसको रक्षा करके हमारे पास वापस ला। तो तब इस समय अर्जुन का जो अस्त्र जो था वो उस कमरा में था जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी थी। तो अर्जुन का मन में ये संकट हुआ कि द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ हैं और ये डाकुओं के साथ मुकाबला करने के लिए मेरा अस्त्र का जरूरत होगा, तो मैं कैसी अस्त्र लाऊं, घर में तो दो है, अगर मैं गया तो प्रतिज्ञा वर्ष हमें 12 साल यहां से निकल जाना होगा, वनवासी होना होगा। बल्कि उसके पश्चात अर्जुन ने सोचा तो बल्कि ब्राह्मण को रक्षा करना मेरा धर्म है, चाहे 12 साल के लिए हमें वनवास में जाना पड़े तो भी ब्राह्मण को रक्षा करना चाहिए। तो ये सच सोचकर अर्जुन घर गए और वहां से अपना धनुष बाण लेकर निकलकर वो डाकुओं का पीछा करके गाय को रक्षा किया और ब्राह्मण के पास वापस कर दिया। तब और इसके पश्चात घर में आकर युधिष्ठिर महाराज को बोला कि चूंकि मैं प्रतिज्ञा भंग किया हूं तो इसलिए मैं अब वनवास में जा रहा हूं। तो युधिष्ठिर महाराज उसको समझाया, देखो ये तो कर्तव्य के वश तुमको इस घर में आना पड़ा, तुम तो अपना इच्छा से ये नहीं किया, कर्तव्य का पालन करते हुए तुम आए हो और बड़े भाई के पास छोटे भाई अगर गए हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, तो तुमको घर त्यागना नहीं होगा। बल्कि अर्जुन बोला क्योंकि ये हमारा प्रतिज्ञा है, ये हमारा नियम है जो हम खुद किए हैं, तो इसको पालन हमें जरूरी करना पड़ेगा। तो ये कहकर अर्जुन 12 साल के लिए इंद्रप्रस्थ से निकल पड़े। अर्जुन घूमते घूमते बहुत सारे तीर्थ स्थान भ्रमण किया। तीर्थ भ्रमण के पश्चात हरिद्वार में गंगा के तट पर आया, वहां साधु संतों के साथ बहुत आनंद से दिव्य ज्ञान का चर्चा करते हुए उनके साथ अपना समय गुजारने लगा। तो एक दिन जब अर्जुन गंगा में नहाने को गया तो एक नाग राज कन्या उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित होकर अर्जुन को वहां से ले गई, जो नाग लोक में ले गया अर्जुन को। तो अर्जुन ने पूछा क्यों तुम हमको यहां लाए हो, तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में लाए हो, तुम कौन हो? अर्जुन पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाम नाग की कन्या उलूपी हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा हूं। मैं साधीन नहीं हूं, मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं, परंतु मैंने अब तक कभी किसी प्रकार असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे झूठ का पाप ना लगे, मेरे धर्म का लोप ना हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिए। तो अर्जुन ने उनको समझाने का कोशिश किया कि ये काम तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान देना मेरे लिए अब संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं 12 साल के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने का अंगीकार किया हूं। तो अब उलूपी ने कहा, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी उसे मैं जानती हूं, परंतु वो नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए ही है। इस लोक में मेरे पास इस धर्म का लोप नहीं होता। ये जो मर्यादा था, ये जो नियम था, ये द्रौपदी के लिए है। इसका प्रयोग या आपका ब्रह्मचार्य का जो ये था वो द्रौपदी के कार लिए ही है केवल। उसका ये उसका प्रयोग और इसका ये यहां नहीं होगा। और इस लोक में मेरा साथ उस धर्म का लोप नहीं होगा। तो ऐसे तब अर्जुन उलूपी के साथ रहे। अर्जुन ने उलूपी का प्राण रक्षा के धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वहीं रहे। दूसरे दिन वे वहां से निकलकर हरिद्वार में आ गए। चलते समय नागकन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। क्योंकि वह नागकन्या था तो सारे जलचर प्राणी के ऊपर उलूपी का जो अधिकार था उसके बल से उलूपी ने अर्जुन को ये क्या और अर्जुन को ये बड़ तो नहीं ये निर्भय दिया था अर्जुन को। तो इसके बाद अर्जुन फिर से हिमालय के तटभूमि पर चले गए और वहां घूमते घूमते बहुत सारे देशों भ्रमण करते हुए कलिंग देश की सीमा से उसकी अनुमति लेकर लौट पड़े। अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होकर समुद्र के किनारे किनारे चलते चलते मणिपुर पहुंचे। मणिपुर का राजा चित्रवाहन बहुत ही धर्मात्मा थे और चित्रवाहन का एक कन्या थी, उसका नाम था चित्रांगदा। तो एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने समझ लिया कि ये यहां की राजकुमारी है। और राजा चित्रवाहन के पास जाकर वो कहा, राजन मैं कुलीन क्षत्रिय हूं, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। तब चित्रवाहन अर्जुन को बताया कि उनका कुल में एक राजा थे जिनका नाम था पूर्वज एक राजा थे जिनका नाम था प्रभंजन। तो प्रभंजन का कोई संतान नहीं था, तो प्रभंजन ने भगवान शिवजी के प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या किया। तब शिवजी ने आकर उनको बर दिया कि तुम्हारे वंश में सबके एक एक संतान होती जाएगी, केवल एक ही संतान होती जाएगी। तो मेरा तो कन्या हुआ, तो एक ही संतान और वो कन्या है चित्रांगदा, बल्कि मैं चित्रांगदा को मेरा पुत्र की तरह उसको मैं पालन पोषण करके बड़ा किया। तो तुम चित्रांगदा को शादी कर सकते हो, विवाह कर सकती हो सकते हो, बल्कि चित्रांगदा का जो पुत्र जो होगा वो हमको देना होगा, मैं उसको दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करूंगा। तो अर्जुन इस शर्त को स्वीकार कर लिया। और तो वहां अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली, विधिपूर्वक विवाह हुआ, और पुत्र होने पर अर्जुन फिर वहां से राजा से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तो ऐसे बहुत सारे तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात अर्जुन दक्षिणी समुद्र के उत्तर तटवर्तनी तीर्थों का यात्रा करके पश्चिमी समुद्र के तट पर तीर्थ की यात्रा करने लगे। वहां से पूरब के तट से होते हुए दक्षिण गए, दक्षिण होकर पश्चिमी तट पर जो तीर्थ हैं वहां भ्रमण करने लगे। करते करते अर्जुन प्रभाष तीर्थ में आए। तो प्रभाष तीर्थ में जब अर्जुन आया तब कृष्ण का खबर मिला कि अर्जुन प्रभाष तीर्थ में आया। तो कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन से मिलने के लिए वहां आ गए द्वारका से। और कुछ समय के बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे। वहां श्री कृष्ण के सेवकों ने पहले से ही सब प्रकार के सजावट एवं खाने पीने सोने घूमने की सुविधा कर रखी थी। वहां भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन का राजोचित सम्मान और तरह तरह से मनोरंजन किया गया। रात को सोने के समय अर्जुन अपनी यात्रा की बातें सुनाते रहे। अर्जुन ये भ्रमण के वृत्तांत कृष्ण को सुनाते रहे। तो इसके पश्चात वहां से द्वारका गए दोनों मित्र ने। और अर्जुन के सम्मान के लिए द्वारका पुरी के उपवन महल सड़कें सब सजा दिए गए थे। यदुवंशियों ने बड़े उत्साह के साथ अर्जुन को स्वागत सत्कार किया और अपनी स्थिति पद और योग्यता के अनुसार उनका अभिनंदन किया। द्वारका पुरी में वे भगवान श्री कृष्ण के निज मंदिर में ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियों में एक साथ ही सोए। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन आक्षेप कर रहे थे, जब अर्जुन को पता विश्वरूप दर्शन करने के पश्चात अर्जुन को जब पता चला कि कृष्ण ही भगवान है, तब अर्जुन बताए थे कि कृष्ण मैं तुम्हारे साथ एक साथ सोया खाया बैठा और तुमको सखे इत्यादि रूप में संभाषण किया, ये जो गलत मेरा हुआ था माफ कर देना। इसलिए तो एक बार वृष्णि भोज और अंधक वंश के जो जदु वंश जो है उसका तीन धारा है, वृष्णि भोज और अंधक जादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपर संपत्ति का दान किया गया। जदुवंशी बालक सज धज कर टहल रहे थे। सब जदुवंशियों ने वहां रैवतक पर्वत पर एक उत्सव मना रहे थे। तो वहां अर्जुन सुभद्रा को देखा। तो सुभद्रा को अर्जुन देखते ही ऐसे उसको देखने लगे, उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एक टक उसकी ओर देखने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियों को यह स्वयंवर की चाल है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें। तो मतलब जब कृष्ण ने देखा अर्जुन इस ऐसे सुभद्रा की ओर देख रहा था कि कृष्ण को पता चला कि अर्जुन सुभद्रा के प्रेम में मोहित हो गए हैं, रूप से मोहित हो गए हैं। तो कृष्ण ने बताया ठीक है अर्जुन, तुम अगर सुभद्रा को ब्याह करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बल्कि कैसे करोगे इसका एक हाँ प्लान करना चाहिए। तो ये प्लान के बारे में बताया, देखो हमारा तो रीति है स्वयंवरा का, कन्या स्वयं अपने वर को चुनते हैं, मनोनयन करते हैं। तो इसमें तो एक चांस का सवाल होता है, तुम सुभद्रा को चाहते हो, अगर सुभद्रा तुमको नहीं चाहा और किसी को ये ग्रहण कर लिया तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा रहेगा तुम सुभद्रा को हरण कर लो, ये भी क्षत्रिय के लिए ये भी रीति है। तो जब कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे बताया तो दोनों ने सोचा तो चलो पहले हम युधिष्ठिर का अनुमति लेते हैं, युधिष्ठिर अगर मान लेंगे तभी हम सुभद्रा हरण करेंगे। तो युधिष्ठिर के पास दूत भेजा और युधिष्ठिर महाराज अनुमति दिया और तब जब सुभद्रा एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की और ब्राह्मण ने मंगल वाचन किया, जब सुभद्रा को सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और उस सुवर्णमय रथ से अपनी नगरी की ओर चल दिए। तो बॉडीगार्ड जो थे वो रक्षा करने का कोशिश किया, बल्कि अर्जुन के साथ कौन मुकाबला करेंगे, अर्जुन सबको हरा दिया। तो वो सब जाके जदुवंशियों को खबर दिया कि ऐसा हुआ, तो बहुत क्रोधित हो गया कि हमें ऐसे अपमान किया, हमारे सामने हमारे घर में अतिथि बनकर आकर हमारा घर का हमारे लड़की को चुरा कर ले गया है, ये कैसी बात, चलो उसको हम सही शिक्षा देंगे। फिर ऐसे सब तैयार होने लगा, उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बांधने लगा, कोई ताव के मारे खुद घोड़ा जोतने लगा, युद्ध की सामग्री इकट्ठी होने लगी। तब बलराम जी ने कहा, जदुवंशियों श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग इसी नासमझी क्यों कर रहे हो, इस झूठ मूठ के गरजने के अभिप्राय क्या है। इसके बाद उन्होंने कृष्ण से कहा, जनार्दन तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है। बलराम देखा कि सब लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, सजावट हो रहा है, बल्कि कृष्ण ने कुछ नहीं कर रहे, कृष्ण चुप होकर बैठा है। तो इसलिए बलराम कृष्ण को पूछा, तुम चुप क्यों हो, ऐसे हमारे कुल में इतना अपमान हो रहा है, देखो अर्जुन जैसा काम किया है ये तो एकदम सही नहीं है, घर में आकर जो घर में अतिथि बनकर घर का सामग्री चुराकर भाग रहा है, ये कैसी बात है। तो बलराम क्रोधित हुआ था, बल्कि कृष्ण के ये भाव देखकर बलराम के मन में भी कुछ ऐसा भावना आया कि कृष्ण क्यों क्रोधित नहीं हो रहा है, कृष्ण क्यों कुछ नहीं कह रहा है। तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाता उसी में छेद दिया। वो उत्तम वंश का होनहार युवक है, उसके साथ संबंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी उसने ये साहस करके हमें अपमानित और अनादृत किया है, उसका ये कार्य हमारे माथे पर पैर रखने का बराबर है। मैं ये नहीं सह सकता, मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियों के लिए काफी हूं, मैं अर्जुन को ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता। बलराम जी की विरोचित बात का सुन सब जदुवंशियों ने अनुमोदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं किया है, सम्मान किया है, उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारे बहिन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुसार हुआ है और हमारे यज्ञ हैं। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के दोहित्र के कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे ना पसंद हो सकता है। अर्जुन को जितना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। शंकर भगवान के अलावा और किसी ने अर्जुन को जीत नहीं सकता है। इस समय उस फुर्तीले जवान योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूं कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम होगा। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो जदुवंश की बड़े बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा। सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे एक वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। जब इंद्रप्रस्थ के में आए तो सुभद्रा लाल रंग के रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिनी के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्रवधु को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी को पैर छूकर कहा कि बहन, मैं तुम्हारे दासी हूं। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर गले लगा लिया। तो ऐसे अर्जुन 12 साल के पश्चात हस्तिनापुर में वापस आया। तो कुछ समय बाद यथा समय सुभद्रा का एक पुत्र हुआ। उसका नाम था अभिमन्यु। और पांडवों के पुत्र में से अभिमन्यु ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा था। और द्रौपदी का गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा एक एक वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुआ। तो युधिष्ठिर का पुत्र का नाम था प्रतिबिंब। भीमसेन का पुत्र का नाम था सूतसोम। अर्जुन का पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा। और नकुल का पुत्र का नाम था शतानिक। और सहदेव का पुत्र का नाम था श्रुतसेन। ऐसे 5 पुत्र हुआ। प्रतिबिंब, सूतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन। तो एक दिन, अच्छा मैं यहां तक ही आज रखता हूं।